नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर अपने इस मंदिर के जो प्रधान परिकर हैं भगवान राम के जैसे सीता जी लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी तो सीता जी और लक्ष्मण जी के बारे में मैं कुछ कह दिया आज हनुमान जी के विषय में कहने की इच्छा है अतः श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं श्री हनुमान जी भगवान राम की लीला में कब प्रकट हुए कहां से आए इसकी चर्चा करेंगे पंचवटी से चलकर के श्री भगवान दक्षिण दिशा में बढ़ने लगे अपने भाई के साथ सीता जी का तो हरण हो चुका था तो वे चलते चलते कुछ दूर पहुंचे दक्षिण दिशा में तो जटायु मिले जटायु के पंख को रावण ने काट दिया था जटायु मरणासन्न पड़े थे भगवान की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है जटायु से भेंट हुई तो उन्हीं जटायु ने भगवान से बताया कि सीता का हरण रावण ने किया है और उसी ने मुझे मारा है तो श्री भगवान दूसरे दिन प्रातः काल जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया किए श्राद्ध किए एक कवि ने लिखा है कि मैंने अंतिम क्रिया मैंने पिता की नहीं की गिद्ध की उपकार के सत्कार में उसको मिली गति सिद्ध की मैथिली शरण गुप्त एक महाकवि है हिंदी भाषा के उन्होंने लिखा है भगवान कहते हैं कि मैंने पिता की क्रिया नहीं की उनका श्राद्ध नहीं किया और मैंने गिद्ध का श्राद्ध किया इस गिद्ध ने जटायु ने बहुत उपकार किया सीता की रक्षा करने का प्रयास किया और सीता का पूरा पता बता दिया राम को तो उसको वह गति मिली जो बड़े बड़े भक्तों को मिलती है, सिद्धों को। इसी महान कार्य के चलते, भगवान की सहायता करने के कारण गिद्धराज जटायु को वैकुंठ मिला, तो चतुर्भुज रूप से भगवान के धाम चले गए। जटायु से ही पता चला कि रावण सीता का हरण किया है और दक्षिण दिशा में ले गया है। वहां से फिर दोनों भाई आगे बढ़ने लगे। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत घेराया। श्री भगवान दक्षिण दिशा में बढ़ रहे थे, पश्चिम समुद्र के किनारे किनारे। तो आजकल तो उस राज्य का नाम कर्नाटक हो गया है, लेकिन पहले इस पूरे क्षेत्र को मलय ही कहा जाता था। तो भगवान आगे बढ़े लक्ष्मण जी के साथ, ऋष्य मुख पर्वत के पास चले गए, निराय निकट चले गए। उसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते थे। श्री हनुमान जी उनके मंत्री के रूप में रहते थे। बहुत ऊंचे शिखर पर से सुग्रीव जी ने देख लिया कि ये दो राजकुमार धनुष बाण लेकर के कुछ खोजते हुए आ रहे हैं। झाड़ी में, नदी के किनारे, पर्वत की गुफा में इधर उधर देखते आ रहे थे भगवान, सीता का अन्वेषण करते हुए। तो सुग्रीव जी ने अपने मंत्री श्री हनुमान जी से कहा, ये पता लगाइए दोनों कौन हैं, लगता है कि बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। उनको बहुत भय हुआ। तो श्री हनुमान जी कहे, चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा ये कौन है। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण किए, वैष्णव का, और राम लक्ष्मण के पास आए। यही सबसे पहला प्रसंग मिलता है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में। ब्राह्मण होते हुए भी श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, जबकि भगवान एक क्षत्रिय हैं। पूछा राम से कि आप दोनों कौन हैं, इस वन में क्यों आए हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। उसी वन में हमारे साथ एक स्त्री आई थी सीता नाम की, उसको राक्षसों ने यहाँ गायब कर दिया है, हर लिया है। उसी की खोज करते हुए हम लोग चल रहे हैं। हनुमान जी को बहुत बड़ा आश्वासन मिला, ये दोनों सुग्रीव का वध करने के लिए नहीं आए हैं, ये तो अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं। जब भगवान ने प्रवचन पूरा किया, उसके बाद ये पूछे कि हे ब्राह्मण, हम अपनी कथा सुना दी आपको, आप अपनी बात बताइए, आप कौन हैं। तब हनुमान जी रोने लगे, मैं तो आपकी माया के बस में हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप एक मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हैं। तब हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाया, अपने कंधे पर लेकर के उड़ गए। विश्वमुख पर्वत के ऊपर जहाँ सुग्रीव रहते थे वहाँ पहुँच गए, और सुग्रीव से हनुमान जी ने भगवान का फ्रेंडशिप कराया, सख्य कराया। बहुत विधि विधान से अग्नि जला करके सुग्रीव और भगवान राम में मित्रता हुई। दोनों ने परस्पर स्वीकार किया कि हम आपकी मदद करेंगे। तो भगवान ने पूछा कि आप पर्वत पर क्यों रहते हैं, गांव छोड़ करके, राजधानी छोड़ करके आप पर्वत पर क्यों रहते हैं। तब सुग्रीव जी ने कथा सुनाई कि हे प्रभु, हम और बाली सगे भाई हैं, हमारे गांव में एक बार मैं दानव का लड़का मायावी आया, तो मायावी को बाली ने खदेड़ा, और भागते भागते पर्वत की गुफा में घुस गया। मैं सोचा कि बाद में वो निकल करके आएगा पर्वत से, हमारा वध करेगा, तो मैंने ये विचार करके उस पर्वत की गुफा पर बहुत बड़ा शिला रख दिया, पत्थर रख दिया, चट्टान रख दिया। मैं विचार नहीं किया कि बाली क्या सोचेगा, तो खून बह चला था। बाली ने हमको कहा था कि मैं 15 दिन के बाद आ सकता हूँ, 15 दिन के बाद यदि नहीं आऊंगा तो तुम समझना कि मायावी हमको मार दिया। तो सुग्रीव जी कहते हैं भगवान से कि मैं 15 दिन के बदले 1 महीना प्रतीक्षा किया, और गुफा से खून बहने लगा, तो मैं निश्चित कर लिया कि बाली मारा गया। खून किस कारण से आया पता नहीं चला, जो किसी और का खून था। 1 महीने के बाद बाली आया और कहने लगा कि तुम हमको मरा समझ करके पत्थर रख करके आ गया, इससे अपराध मान करके उसने हमको बहुत पीटा, बहुत मारा, और मारा ही नहीं, हमारा धन और हमारी पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव बहुत दुखी थे, भगवान से कहने लगे हमको बहुत दुख दिया है बाली, अब हमारे आप मित्र हो गए, हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। तो सुग्रीव ने फिर प्रतिज्ञा किया कि मैं कोटि कोटि बानरों को भेज करके माता सीता का पता लगा लूंगा। उन्होंने कहा कि एक बार मैं इसी पर्वत पर ऊपर शिखर पर बैठा हुआ था, एक स्त्री विमान से जा रही थी, बहुत विलाप कर रहे थे, उसने अपना आभूषण वस्त्र में बांध करके फेंका है। भगवान ने पूछा कि वो वस्त्र कहाँ है, वो आभूषण। तो सुग्रीव जी दिए बड़ी सुरक्षा से उसको रखे थे, भगवान पहचान गए सीता के आभूषण और वस्त्र, वस्त्र के टुकड़े लेकर के बहुत विलाप किए। राम सीता के विषय में कह करके बहुत रोए, तो सुग्रीव जी उनको आश्वासन दे रहे हैं, आप विलाप मत कीजिए, मैं मित्रता निभाऊंगा, माता सीता का पता लगा लूंगा, मेरे पास बहुत बानर हैं, बड़े बलवान बानर हैं, जिसमें सबसे बढ़ करके हनुमान जी थे, मैं दसों दिशाओं में चारों तरफ भेजूंगा बानरों, और माता सीता का पता लगा लूंगा। उसके बाद श्री भगवान ने भी कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, बाली का त्रास खत्म कर दूंगा। तो भगवान ने कहा बाली सुग्रीव को कि आप जा करके उसको पुकारिए लड़ने के लिए। तो सुग्रीव गए, राम का सहारा था, पुकारे बाली को, बाली पुकार को सह नहीं सका, युद्ध के लिए आ गया। सुग्रीव में उत्साह था, भगवान का बल था, लड़ने लगे, लेकिन बाली बहुत बलवान था, उसने बहुत तरह से मारा सुग्रीव को। तो सुग्रीव भाग करके आ गए राम के पास, उन्होंने सुनाया कि मैं कह रहा था ना कि ये भाई नहीं काल है, बहुत मारा है। तो श्री भगवान सुग्रीव को सहलाए अपने हाथ से, जहाँ घाव लगा था सब जगह सहलाए, शरीर पूरा ठीक हो गया, और अपना बल दे करके सुग्रीव में उन्होंने फिर भेजा। तो कहा कि हमको पहचान नहीं आई, दोनों भाई एक जैसे हैं, इसलिए अब अपनी माला पहना करके भेज रहा हूँ। तो भगवान ने अपनी माला पहनाया सुग्रीव को, सुग्रीव को फिर युद्ध के लिए भेजा। तो युद्ध हो रहा था, भगवान पेड़ की आड़ में छिपे थे, एक बाण उन्होंने चला दिया बाली पर, बाली गिरा मर गया। इसके बाद सुग्रीव अपनी राजधानी में गए और राजा बन गए, और भगवान वन में रहते थे। पूरा चार महीना वन में थे भगवान, और बाली के पद के बाद सुग्रीव अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते, राजधानी में। भूल गए कि राम की सहायता करनी है। भगवान राम उस समय मतंग मुनि के आश्रम के पास वन में विलाप करते रहते थे। वह विलाप वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है, बहुत कठिन, बहुत तरह से रो रहे थे सीता के विरह में, रोते हुए उन्होंने बिताया चार महीना। शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु आने पर भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि मैं तो गांव में जा नहीं सकता हूँ, पिता का वचन है वन में रहने का, तुम जाओ गांव में और सुग्रीव को कहो कि हमारा काम करे। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को डांट टपट करके लाए। सुग्रीव बहुत क्षमा मांगे भगवान से, मैं जीव हूँ, गलती हो सकती है, आप क्षमा कीजिए। और इसके बाद बहुत सी सेना बानरों की भगवान के सामने खड़ी किए, सभी आकर के भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके वे तैयार हुए कि माता सीता की खोज करनी है। बानरों की वह सेना भगवान के सामने खड़ी है तो श्री भगवान सबसे मुख्य बानर श्री हनुमान जी को अपने पास बुलाए और कहे, आप जा रहे हैं सीता का पता लगाने, ठीक है, जब सीता मिले तो ये अंगूठी दे दीजिएगा। अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके दिए हनुमान जी को। हनुमान जी उसे सिर से लिए। भगवान ने और किसी बानर को चिन्ह नहीं दिया लेकिन हनुमान जी को ही दिया। तो हनुमान जी बानरों के साथ खोजते हुए चले बड़े बड़े पर्वत पर। पर्वत के घाटी में सब जगह खोज रहे थे। जब बानरों का दल पहुंचा समुद्र के किनारे, तब उनको एक गिद्ध मिला। गिद्ध का दर्शन करके सबको बड़ा भय हुआ। वो बोला भी कि हम बहुत दिन से भूखे हैं, भगवान ने हमको भोजन दिया है। इसे विनोद किया और जानता था कि ये लोग भगवान के दास हैं, भगवान का काम करने के लिए आए हैं, जो कुछ बात करना चाहता था। उसने सुनाया फिर हनुमान जी को, जामान जी को, कि हम और जटायु दो भाई हैं, हमारा नाम संपाती है, हम दोनों जवानी में बहुत बड़ी उड़ान भरे और सूर्य लोक पहुंचने की चेष्टा किए, तो सूर्य की किरणों से जटायु का पंख जलने लगा तो वो बेचारा लौट गया। और मैं बहुत जोम में था, हठ में, मैं और निकट चला गया सूर्य के, तो मेरे पंख जल गए। लेकिन आप भक्तों के दर्शन से और राम की कथा सुन करके मेरे पंख उगाए, पूर्णतः उगाए पंख, जवान शरीर में जैसे थे वैसे। तो वह कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं माता सीता का पता लगा लेता हूँ, वहीं से बहुत बड़ी ऊंची उड़ान भरा, ऊंचा उड़ करके देखा लंका में सीता जी हैं अशोक वृक्ष के नीचे। घर आकर के सुनाया कि मैं पता लगा लिया, आप लोग नहीं देख रहे हैं लेकिन गिद्ध को बहुत बड़ी दृष्टि होती है, मैं देख लिया माता सीता लंका में है, बहुत शोक में है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन्होंने सुझाव दिया कि कोई वीर यदि इस समुद्र को पार कर सकता है तो वह जाए माता सीता का भली भांति पता लगा ले। तब जमवान जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान तुम्हारा अवतार इसीलिए हुआ है, राम काज लगता अवतार है, राम का काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तो सुनते ही भय पर्वताकार, सुनते ही हनुमान जी पर्वत जैसे बड़े हो गए। जय श्री राम कह करके उन्होंने छलांग लिया, तो भाई पुत्र है आकाश में उड़ गए, उड़ करके गए लंका। वहां जाकर के माता सीता से भेंट किए, उनका दुख दूर किए। माता सीता को बहुत बड़ा दुख था, वहां बहुत फूल खिले थे, अशोक वाटिका में कोयल बोल रही थी, बड़ा कुछ बड़े बड़े वृक्ष हरे भरे थे, इस कारण से सीता जी को विरह का और अनुभव हो रहा था, अपने प्रियतम के विरह में रो रही थी। तो श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ना चालू किया, क्योंकि वो सीता के विरह को बढ़ा रहे थे। सारे वृक्षों को तोड़ दिया फल खाने के बहाने, फिर उनको बांधा गया। रावण का लड़का अक्षय कुमार उनको बांधा, बांधने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ करके उस पर फेंक दिए, वो मर गया। इसके बाद रावण का दूसरा लड़का मेघनाथ वो आया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का अर्थ ब्रह्मा जी का अस्त्र, जो ब्राह्मण जनेऊ से मारा हनुमान जी को, अपने बाण में जनेऊ लपेट करके हनुमान जी को बांधा। तो जनेऊ की मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी बंध गए। और इसके बाद मेघनाथ बांध करके लाया, सब राक्षस लाख से मार रहे थे अशोक वाटिका उजाड़ने के कारण, तो कई राक्षसों को उन्होंने मारा था, इसलिए सब लोग तमाशा देखने लगे, मारने लगे, कोई जूता से कोई लात से हनुमान जी को मार रहे थे। इस तरह भगवान के काम के लिए हनुमान जी ने यह सब सहन किया। उसके बाद हनुमान जी माता सीता से मिल करके लौट आए। बहुत बड़ी कथा है, पूरा सुंदर कांड हनुमान जी की कीर्ति से भरा हुआ है। इसके बाद समुद्र पर पुल बांधा गया, सेतु निर्माण में हनुमान जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़े बड़े पर्वत के शिखर ला ला करके बांधनों ने दिया, सेतु निर्माण किया गया। इसके बाद विशाल बांधवी सेना लंका में प्रवेश की। इसके बाद राक्षसों के साथ बहुत घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सबसे ज्यादा जो वध किया हनुमान जी ने, भगवान राम के बाद इनका विकराल रूप हो गया था युद्ध में। एक बार अंतिम युद्ध में जब रावण आया, हनुमान जी उसके साथ गिर गए। हनुमान जी बहुत गाली दिए,
کالا چور کہیں سے استری چرا کر کے لایا, راون رنج ہو گیا کہ تم کیا ویر ہو, تم آگ لگا کر چلا گیا, یہی ویر کا کام ہے. تو ہنومان جی کہے کہ تم میری ویرتا دیکھنا چاہتے ہو, میرے ایک موقع کو برداشت کر لو. سب راون نے بھی کہا ٹھیک ہے مارو مکا. ہنومان جی نے مکا مارا اور دھرتی پر لوٹ گیا, لگا کہ مر جائے گا لیکن مرا نہیں, کسی طرح سے کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ہنومان جی کو مکا مارا راون نے, تو ہنومان جی تھوڑا بھی جھکے نہیں, جیسے کھڑے تھے ویسے ہی رہ گئے. پر ہنومان جی کہتے ہیں تم میری ایک مشتکا سے مرا نہیں, میرے ماتا کے دودھ کو دھکار ہے, میری مشتکا لگنے کے بعد بھی جی گیا تو میری ماتا کو دھکار ہے, میری ماتا کے چھاتی کے دودھ کو تم نے لجا دیا. ہنومان جی کو ہنومان جی میں اتنا بل تھا مشتکا میں, راون جیسا ویر بے ہوش ہو گیا, ایک بار گر گیا. پھر یدھ سماپت ہوا, پشپک ویمان پر سبھی بانروں کو بھگوان نے کہا چڑھنے کے لیے. شری ہنومان جی پشپک ویمان پر بھی بھگوان کے چرنوں کے پاس بیٹھے اور آئے ایودھیا. انہوں نے سب سے پہلے خبر دیا بھرت جی کو کہ بھگوان آ رہے ہیں, بھرت جی کے پرانا بچائے ہنومان جی. اس کے بعد ابھیشیک ہوا, راجیہ ابھیشیک بھگوان کا. ہنومان جی سب سے بڑے سیوک کے روپ میں رام کے نکٹ رہتے تھے, سیوا کرتے تھے. ایودھیا میں یہ بات پھیل گئی رام کا سیوک واسطو میں شری ہنومان ہے. ہزاروں سیوک تھے لیکن سب جگہ یہی بات پھیل گئی کہ رام کے دوت, رام کے سیوک, رام داس ہنومان ہے. ہنومان جی کے لیے اور کوئی وشیشن نہیں تھا, کوئی کہہ دے کہ رام کا دوت تو اس کا ارتھ سمجھا جاتا تھا کہ ہنومان جی, رام کا سیوک اس کا بھی مطلب سمجھا جاتا تھا ہنومان جی. یہ ایک چھوٹی سی کتھا ہے. ایک بار ایودھیا میں یہ بات پھیل گئی, سب جگہ ہنومان جی کی چرچا تھی. تو ہم جو بھگوان کے سیوک تھے جیسے بھرت جی, لکشمن جی, شتروگھن جی اور بھی سیوک بہت سے, بانر اور دیوتا سب سیوا کرتے تھے. چونکہ رام راجا دھیراج ہے نا, راجا رام, ایسا راجا وشو میں کوئی ہوا نہیں. رام نے جو راج استھاپت کیا اس رام راج کا ورنن کیا جاتا ہے, سارا سکھ تھا, کوئی بھوتک دیہک یا آدھیاتمک تاپ نہیں تھا, جنتا سب سکھی تھے, برسہ ٹھیک سے ہوتی تھی, گووں کا دودھ بہت بڑھ گیا تھا, گویں سکھی تھی, سبھی لوگ پرم سکھی تھے, پرم دھرماتما تھے. राम राज में एक भी व्यभिचारी नहीं था, एक भी जुआरी नहीं था, सभी धर्म परायण थे। चूंकि राजा धार्मिक थे, ऐसा राज्य स्थापित किया श्री भगवान ने। उस राज्य की चर्चा सुन करके महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हमारे देश में राम राज्य स्थापित हो। बहुत कोशिश किए लोग, बड़े बड़े लोग, लेकिन कलयुग के प्रभाव से हो नहीं पाया। परंतु आदर्श हैं भगवान राम, वही राष्ट्र पुरुष हैं। उन्होंने राज्य स्थापित किया, सब सुखी हो गए, कोई किसी की निंदा नहीं करता था, कोई किसी को दुख नहीं देता था। यहाँ तक कि एक कुत्ते को एक व्यक्ति ने मार दिया डंडे से, तो वह कुत्ता राम दरबार में गया और उसको न्याय मिला। कुत्ते से भगवान राम ने पूछा कि तुमको क्या न्याय दिया जाए, तो कुत्ता बताया कि मैं पहले एक मंदिर में महंत था, अध्यक्ष था, मैं बहुत पाप किया, महंत होने पर पाप होता ही है, किसी को प्रसाद देता था, किसी को नहीं देता था, इस तरह मैंने विषमता किया, तो एक काम किया गया, सरकार जो हमको मारा है ब्राह्मण, उसको महंत बना दिया जाए इस महंत मंदिर में, क्योंकि जो अपराध करता है रेसिडेंट मंदिर में विषमता करता है, भगवान की संपत्ति को अपने भोग में लगाता है, अपने सुख में लगाता है, तो उसको दंड मिलता है, तो कुत्ता होता है। तो इसीलिए जो हमको मारा है उसको कुत्ता बना दिया गया महंत, जिससे वो कुत्ता बनेगा बाद। ऐसा न्याय मिलता था राम के राज में कुत्ते को भी। तो हनुमान जी के प्रति लोगों की स्पर्धा होने लगी कि हनुमान का नाम इतना बढ़ गया, सेवा करने में केवल इनका ही नाम आता है। तो अयोध्या में बहुत से लोगों ने सोचा कि हनुमान ही क्यों सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। सबके मन में बात आई, भगवान के तो सभी सेवक हैं, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, क्यों हनुमान ही करेंगे। तो सबने एक मीटिंग किया अयोध्या में, इष्ट गोष्ठी, कि हनुमान को सेवा से हटाया जाए। आपस में मीटिंग किए, सब लोग सेवा बांट लीजिए, कोई सेवा बचे नहीं, पहले सेवा का लिस्ट बनाया जाए। इसके लिए निमंत्रित किया गया गणपति जी को लिस्ट बनाने के लिए। सबसे बड़े लेखक हैं, तो लिस्ट बनने लगा, सेवा पहले बताई गई, सेवा क्या क्या है, सवेरे मंगला आरती से लेकर के सोने तक बहुत सेवाएं हैं, तो सेवा
बांटी जाएगी, कौन स्नान कराएगा, कौन दत्वन कराएगा भगवान को, कौन तेल लगाएगा सुगंधित तेल सिर में, चरण का मसाज कौन करेगा, कौन भोजन कराएगा, कपड़ा कौन धोएगा, या जितने प्रकार की सेवा हो सकती है सारी सेवा लिखी गई गणपति जी ने लिखा। ब्रह्मा जी भी उस सभा में आए थे, उन्होंने सेवा बांटना चालू किया, किसके योग्य कौन है, सेवा किसको दी जाएगी, सब सेवा लिखी गई। सेवा पहले सेवा लिखी गई, सेवा के जगह बाद उसके सामने सेवक का नाम, ये सेवा ये करेगा, ये सेवा ये करेगा, सेवक का नाम लिखा गया, लिस्ट पूरा भर गया। अब सेवा करने वाले सब भर गए, क्योंकि भगवान का सेवक तो सारा विश्व है। ब्रह्मा जी भी सेवा चाहते हैं, भगवान शंकर भी सेवा चाहते हैं, तो सब लोग सेवा ले लिए। भरत जी सेवा ले लिए, लक्ष्मण जी सेवा ले लिए, स्पर्धा हुई। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा देखा जाता है, होड़ लगती है। जैसे हम लोग पुस्तक बांटते हैं दिसंबर में, तो होड़ रहती है कि हम अधिक से अधिक बांट दें। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की सेवा करने के लिए होड़ रहती है, हम करें हम करें हम करें, क्योंकि सेवा में बहुत अधिक आनंद है। तो यह कोई संसारिक देश नहीं है कि हनुमान जी के प्रति सबकी ये भावना हो गई कि हम सेवा करें हनुमान सेवा न करें। जितना लिस्ट बनाएगा सेवा का, सेवा के आगे सेवक सब निश्चित कर दिए गए। जब कोई सेवा बची नहीं, सेवक अपार हैं भगवान के, सबको सेवा मिल गई। हनुमान जी को खबर दी गई, भरत जी ने बताया कि आपको सेवा नहीं मिली, सेवा नहीं करना है। तो हनुमान जी तो सेवा के स्वरूप ही हैं, उनको पूर्ण विश्वास रहता है कि भगवान हमको सेवा देंगे, पूर्ण विश्वास, सेवा के बिना वे रह ही नहीं सकते। लेकिन लिस्ट पढ़ा हनुमान जी ने, कहीं पर उनका नाम नहीं था और कोई सेवा नहीं। किसी के मन में बात आई होगी कि ये बानर क्यों इतनी सेवा कर रहा है, सब देवताओं के होते हुए मनुष्यों के होते हुए बानर क्यों सेवा में नंबर मार रहा है। जो भी हो, कहीं लिस्ट में नाम नहीं था हनुमान जी का, पर फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, भगवान हमको सेवा देंगे ही। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि ठीक से पढ़ो हनुमान। तो पढ़ रहे थे, देखे कि एक सेवा छूट गई है, सेवा लिखी नहीं गई है। भगवान की इच्छा सेवा छूट गई थी, क्या क्या सेवा छूट गई थी। हनुमान जी ने कहा कि भगवान आपको जब अमासी आवे, जब जम्हाई आवे, उस समय चुटकी बजाने की सेवा कोई लिखी नहीं गई है, तो इसलिए मैं ये सेवा ले रहा हूं। जो सेवा का समय भी लिखा गया था, हनुमान हनुमान जी से फिर पूछा लोगों ने कि सेवा तो आपको मिल गई चुटकी बजाने की, लेकिन चुटकी बजाने का समय तो स्वयं भगवान से ही पूछा गया है। भगवान ने कहा कि अब हमको क्या पता है हमको कब अमावस्या आएगी, क्या रात में आ जाए, दिन में आ जाए, भोजन के पहले आ जाए, भोजन के बाद आ जाए, कभी आ सकती है। इसलिए इस सेवा को वही करेगा जो सब समय मेरे साथ रहेगा, चौबीसों घंटे जो मेरे साथ रहेगा, मेरे मुख को देखता रहेगा कब मुझे आवासी आ रही है। तो हनुमान जी उछल गए, कहे ठीक है मैं सेवा करूं। तो हनुमान जी को ये विश्वास रहता है कि भगवान हमको सेवा देंगे। हनुमान जी सदा राम के साथ ही रहते हैं, उनके मुख को देखते रहते हैं कब आवासी आएगी, चुटकी बजाएगी। राजा महाराजा के सामने चुटकी बजाना जरूरी है, ये तो राजाओं के भी राजा हैं, इनको अमावस्या आवे तो चुटकी बजाना चाहिए। तो हनुमान जी को ये सेवा मिली, सबने सेवा छीन लिया था, सब कहते थे कि हनुमान को सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन हनुमान जी को सेवा मिल गई चौबीसों घंटे राम के साथ रह करके। कोई भी व्यक्ति जो सेवा करना चाहता है तो भगवान सेवा देते हैं, हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि हम सेवा करेंगे। हनुमान जी सबसे बड़े सेवक हैं, हनुमान जी का कोई परिवार नहीं है कि सेवा करके कुछ लें और राम से कुछ पैसा लेकर के दें परिवार को, कुछ भी नहीं, केवल सेवा। सेवा के बिना में जी नहीं सकते, यही हनुमान जी का जीवन है। हम लोग देखते हैं राम दरबार में श्री हनुमान जी बैठे रहते हैं, पर सेवा उनकी चलती रहती है। केवल अमावस्या आने पर ही नहीं, चरणों पर देखते रहते हैं, यही दास का धर्म है। हम लोग जितने भी भक्त हैं सबके परम आदर्श श्री हनुमान जी हैं, हनुमान जी के समान सेवा करनी चाहिए। सब लोग सोच रहे थे कि हनुमान जी को सेवा ना मिले, लेकिन भगवान ने सेवा दे ही दिया। जय श्री हनुमान जी, जय श्री लक्ष्मण पार्वती।